दोस्तों, मेरे काबिले एहतराम बुजुर्गों, नटखट बच्चों, प्यारी बहनों और भाइयों, मैं हूं आपकी मेजबान इरम इमरान और आप समात फरमा रहे हैं इस वक्त रेडियो वेरितास की उर्दू सर्विस। दोस्तों, हमारी आवाज को दिल से कबूल करने का बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे प्रोग्रामों को पसंद करने का बहुत शुक्रिया और जी हाँ, आपके प्यार भरे पैगाम अरसाल करने का भी शुक्रिया। सामाई, आज के प्रोग्राम सुनने से कबल समात फरमा लीजिए हमारे पता जात। दोस्तों, अगर आप हमारे प्रोग्रामों को ऑनलाइन सुनना चाहते हैं तो विजिट कीजिए urdu-veritas-asia.org। और दोस्तों, अगर आप फेसबुक पर हमारे साथ जुड़े हैं तो प्रोग्राम सुनिए और हमारा पेज भी जरूर लाइक कीजिए, जो कि है आरवीए उर्दू सर्विस के नाम से। प्रोग्राम सुनिए और जी हाँ, इसे लाइक करना और इन पर कमेंट करना हरगिज मत भूलिएगा। यूट्यूब पर हमारा चैनल है आरवीए उर्दू सर्विस के नाम से। प्रोग्राम यूट्यूब पर भी आप सुन सकते हैं। हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जो हमारे दोस्त ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हैं, हमें आरवीए उर्दू सर्विस से फॉलो कर सकते हैं और प्रोग्रामों से लुत्फंदोज हो सकते हैं। दोस्तों, आज जुमेरात है और आज के रोज आप प्रोग्राम समाप्त फरमा सकेंगे नखमाए सहर और बस्मे दीवान। दोस्तों, आपको बताते चलें कि ये प्रोग्राम फादर कैसर फेरोज की जेर निगरानी तैयार किए गए हैं। तो आइए समाप्त फरमाइए आज के प्रोग्राम।
हमारे खुदावन यीशु की अंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक उसका 15वां बाब 9-11 आया था। उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, जैसे बाप ने मुझे प्यार किया है वैसे ही मैंने तुम्हें प्यार किया है, तुम मेरे प्यार में कायम रहो। अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे तो मेरे प्यार में कायम रहोगे, जिस तरह मैंने अपने बाप के हुक्मों पर अमल किया है और उसके प्यार में कायम हूँ। मैंने ये बातें इसलिए तुमसे कही कि मेरी खुशी तुम में हो और तुम्हारी खुशी कामिल हो जाए। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, आज के कलाम में मसीह यीशु हमें हदायत करते हैं कि मेरी मोहब्बत से खुद को महरूम ना रखो। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और मुश्ताक हूँ कि देखूँ कि तुम मुझसे किस कदर मोहब्बत करते हो। तुम्हारी दुआएं कहाँ हैं? क्या वो आसमान से टेलीफोन की तरह रास्ता कायम किए हुए हैं? उन हाजतमंदों के लिए तुम क्या नजराना पेश करते हो जो मेरे निजात के काम को कबूल करते हैं? मैं तुम्हें वो करने की तरकीब दे रहा हूँ जो बेहतर और दिलकश है, वो ये कि रहम दिल और पाक बने रहो, मेरी मोहब्बत में कायम रहो। पाक रूह तुम्हें नेक काम करने की तरकीब देगा, ठीक इसी तरह जैसे खुदा हमेशा नेक काम करता आया है। खुदा की ही तरह मोहब्बत ना करना गुनाह है। मसीह हमें खुदा की रहम दिली के दर्जा तक उठाना चाहता है। रहम दिल बनो जैसे मैं और बाप रहम दिल हैं। आप शायद ये महसूस करें कि ये नामुमकिन है, हमारा ख्याल दुरुस्त है, बशर्ते कि हम इस मामले को इंसानी तखय्युल के दायरे तक ही महदूद रखें। लेकिन हम नहीं जानते कि मसीह क्या चाहता है और मसीह यीशु हम में होकर क्या कर सकता है। मसीह यीशु अपना रूह हम पर उंडेल देते हैं ताकि हम वैसे ही मोहब्बत करें जैसा मसीह यीशु हमसे मोहब्बत करता है। इस रूह में पौलुस रसूल कहते हैं कि मैं मसीह की मदद से सब कुछ कर सकता हूँ जो मुझे ताकत बख्शता है। यीशु ने गवाही दी कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया जो खुदा की मर्जी से हम आहंग ना था, बल्कि मसीह यीशु हमेशा खुदा की मोहब्बत में कायम रहे। मसीह खुदा का इत्मीनान, रूह में दुआ करना और पुरखलूस खिदमत की खूह हम में डालते हैं। जब तक इंसान खुदा से दूर रहता है तब तक प्यास उसके दिल की कैफियत जानती है कि वो मुस्तरब है। मसीह जो अपने बाप की मोहब्बत में कायम है खुशी और रूहानी मसरत से मामूर है। मसीह यीशु का बातन मतवातर गीत गाता और तमजीद करता रहता है। मसीह यीशु हमें अपनी निजात के साथ साथ बातनी मोहब्बत का समंदर अनायत करना चाहते हैं। हमारा खुदा असुदा हाली का खुदा है। रूहानी फल की फहरिस्त में मोहब्बत के बाद खुशी दूसरे फल के तौर पर दर्ज की गई है। जब गुनाह निकल जाता है तो खुशी सराहियत कर जाती है। मसीह चाहता है कि हम में निजात की खुशी तकवीयत पाए, ताकि वो दूसरों में तुगयान लाए। मुसरत बख्श खुशी को सिर्फ अपनी हद तक महदूद नहीं रख सकता, बल्कि चाहता है कि दूसरों को भी बचाकर गुनाहों की माफी पाने की रूहानी मुसरत और खुदा की यकीन दहानी की खुशी में शामिल कर ले। और जब बहुत से लोग निजात पाएंगे तो हमारी खुशी मुकम्मल हो जाएगी। जैसे कि पौलुस रसूल कहता है कि खुदा चाहता है कि सब इंसान निजात पाएं और सच्चाई की पहचान तक पहुंचें। अंजील की मनादी करना इख्तलाफात और मुसीबत के बीच में खुशी का चश्मा बन जाता है।
आदाब सामईन, दुआएं मोहब्बतें और नेक तमन्नाएं कबूल कीजिए। मैं हूं आपकी मेजबान इरम इमरान और हस्बे मामूल मेरे साथ हैं जी अंकल दीवान। पेश खिदमत है आपका अपना प्रोग्राम बसमे दीवान।
सुनाइए सामईन, कैसे हाल अहवाल हैं आपके? बेई उम्मीद करते हैं कि आप सब खुदावंद के फजलो करम से ठीक ठाक होंगे। हैं जी, हमारी दुआएं और नेक तमन्नाएं कबूल कीजिए।
जी हाँ दोस्तों, हम हमेशा यही दुआ करते हैं कि हमारे दोस्त खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और इसी तरह से आपस में खुशियाँ बांटते रहें।
हाँ जी बिल्कुल सामईन, और मैंने जो है ना वो एक आज बात सोची है।
क्या अंकल, आपने आज क्या सोच लिया है?
भाई किसी भी शख्स की जिंदगी में जो है ना ये बाल बहुत अहमियत के हामल होते हैं।
बाल कौन से अंकल?
यही जो सर पे होते हैं। अच्छा, और अच्छा। बाल कौन से मतलब?
अच्छा, एक वो बाल बच्चे भी तो होते हैं ना।
ओहो, यही तो बात है ना कि मतलब अब हमारे तो बाल बचे नहीं।
नहीं नहीं अंकल, मैं बच्चों की बात करती हूँ जो क्या कहते हैं।
हाँ जी बाल बच्चे
जी।
हाँ जी ना? वो मुझे मतलब मेरे बाल जो है ना काफी अरसा पहले मतलब कम होना शुरू हो गए थे।
अच्छा।
हाँ जी, तो किसी बंदे ने कहा कि भाई मसला ये है कि अब जाहिर सी बात है तुम्हारे बाल बच्चे हैं तो तुम्हें बालों को बचाने की क्या जरूरत है। हैं जी, तो
जी,
बात ये है कि बाल इंसान की पर्सनैलिटी में बहुत ज्यादा फर्क लेके आते हैं।
सही कह रहे हैं।
एक और था, हाय हाय क्या बात है, हम भी दीवान हुआ करते थे, बल्कि बहुत सारे लोगों की जान हुआ करते थे।
ओहो अंकल, या आज आप कैसी बातें कर रहे हैं रेडियो पर? आपको नहीं पता ये फैमिली रेडियो है?
हाँ जी बिल्कुल, तो मतलब जहरी सी बात है, लोग इज्जत करते थे, लोग प्यार करते थे, हर तरफ हो रही होती थी दीवान निधर आओ दीवान दीवान। फिर जब थोड़े से बड़े हुए हैं जी और बालों ने जो है मतलब पीछे की तरफ रखते सफर बांधना शुरू किया।
अच्छा,
तो फिर क्या बताएं कि ऐसे दिनों में जो है जो दीवान दीवान होती थी वो भाई दीवान होने लगी।
तो सही नहीं अंकल, कोई इज्जत से कोई रिश्ता बताकर आपको बुला रहा है।
हाँ जी, और यकीन जानो फिर ऐसा ऐसा मैं एहसास हुआ कि ये सब सर के बालों का चक्कर है। और अब तो यकीन जानो एक तवील अरसा हो गया कि सर के बालों में इतनी शदीद कमी हो गई है कि जितनी किसी को आयरन की कमी नहीं होती, और इसी कमी की वजह से अच्छा खासा दीवान और भाई दीवान अंकल दीवान बन के रह गया।
अंकल ऐसी भी कोई बात नहीं, उम्र का भी तो तकाजा है ना।
हाँ जी बिल्कुल, और जाहिर सी बात है वो मसला ये है ना कि पहले होता था कि वो कहते थे ना कि जादू वो जो सर चढ़ के बोले।
बिल्कुल
है जी, अब जाहिर सी बात है कहते हैं जी बाहर वो जो सर से झड़ के बोले। है जी, ना सर पे बाल होंगे ना कोई मतलब बंदा। अब तो यकीन जानो सामने से वो मांग निकालते हैं ना, वो निकालने लगते तो ऐसे लगता है कि जैसे किसी ने फर वाली टोपी पहनी होती।
अंकल आप क्यों ऐसे हजरात की दिल आजारी कर रहे हैं जिनके सर से बाल जो है वो झड़ चुके हैं?
नहीं नहीं, ऐसी कौन सी बात है, वो शेर अक्सर ना वो ये मोबाइल शुबैल पे आ जाता है।
कौन सा शेर?
कौन कहता है मेरा महबूब गंजा है?
अच्छा अच्छा,
कौन कहता है मेरा महबूब गंजा है?
ओहो,
उसके सर पे तो बाल ही नहीं है।
सही बात है अंकल, लेकिन जहाँ तक आप बात कर रहे हैं ना ये बालों की और शख्सियत का बहुत चोली दामन का साथ है, तो ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। लेकिन अंकल कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि विग लगा कर रखते हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे?
हाँ जी वो जहरी सी बात है भाई, ये तो अब उनका बेचारे विग भी ना पहने, बल्कि यकीन जानो ये विग का जो सिलसिला है ना, एक जगह पे ना वो हमारे एक बहुत मशहूर जो है ना अदाकार थे रंगीला साहब,
अच्छा अच्छा,
तो उनपे भी ये बहुत बड़ा करम था खुदा का कि उनके भी टाइम से बाल चढ़ना शुरू हो गए,
अच्छा,
और वो सर पे विग लगाते थे। तो बताते हैं कि एक दफा किसी प्रोग्राम में जाना था, अब जैसे ही वो दरवाजे पे पहुंचे तो वो भाई ने कहा जी माफ कीजिएगा, इस प्रोग्राम में जो है ना सर पे टोपी के बगैर कोई नहीं आ सकता।
अच्छा।
वो कहे मैंने टोपी पहनी हुई है।
अच्छा।
वो कहे नहीं जी आपने टोपी कहाँ पहनी हुई है, मुझसे मजाक कर रहे हैं। रंगीला कहता है बस फिर जब उसने दो चार दफा मेरी बात नहीं मानी तो मैंने मतलब सर से विग उतार के तो उसके हाथ में पड़ा दी, बेजी है देखो भाई टोपी पहनी हुई है।
सही कह रहे हैं अंकल आप, लेकिन क्या किया जाए अंकल के जब ऐसी चीजें तो कुदरती तौर पर हो जाती, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अपने बालों की हिफाजत के लिए या उनको जब ये हल्के हल्के झड़ना महसूस होते हैं तो महंगे से महंगा ऑयल इस्तेमाल करते हैं और कोशिश ये होती है कि अच्छा से अच्छा ट्रीटमेंट दिया जाए, लेकिन इसके बावजूद बाल मजीद झड़ना शुरू हो जाते हैं।
हाँ जी बिल्कुल, और ये आजकल तो लोगों को भी पता है, ये जो कारोबारी लोग होते हैं ना इनको भी लोगों की इस कमजोरी का पता है, आप देख लो ये गलियों मोहल्लों में साइकिलों पे लेके फिर रहे होते हैं, तेल रखा होता है, गंजे सर का इलाज, गिरते बालों का इलाज है जी, वो यकीन जानो कई तो वैसे होते हैं, अब जाहिर सी बात है कि मतलब गंजा आदमी मुझसे भी ज्यादा गंजा आदमी साइकिल पे गंजेपन का इलाज करता फिरे, और मैंने कही यार बात सुन पहले अपना तो इलाज कर।
अरे अंकल ये आप हकीकत कह रहे हैं, और आम तौर पर अगर गलियों बाजारों में देखा जाए तो वो बेशुमार तेल बेचते हुए लोग भी नजर आते हैं, जैसे बाल लंबे करने वाला तेल है, खुश्की को दूर करने वाला तेल है, ये वाला तेल है, वो वाला तेल, लेकिन होता तो सब कुछ एक ही है ना कल, ये सब कुछ धोखा दही है।
हाँ जी सही बात है, वो कहते हैं कि हद से निकला पेट और सर से निकले बाल जो हैं वो कभी वापस नहीं आते।
हाँ,
एक दफा जब तोंद निकल आती है वो भी वापस नहीं जाती, और एक दफा जब सर से बाल निकल जाते हैं तो वो भी वापस जरा मुश्किल से ही आते हैं।
सही कह रहे हैं कर। अच्छा अंकल अगर खवातीन की बालों की बात की जाए ना तो वो कितना अच्छे लगते हैं, लंबी सी सादा सी चुटिया जो होती है, और हमारी खवातीन ऐसी बहुत सी हैं जिनके बहुत लंबे बाल हैं और ये खुदा की बड़ी नेमत होती है।
हाँ जी बिल्कुल, और आजकल तो वैसे भी जिनके बाल लंबे नहीं होते उनके लिए भी जो है ना वो नुस्खे मिल जाते हैं, दुकान पे जाओ वो बनी बनाई बालों की गुत मिल जाती है, और मैं तो हैरान रह गया, मैंने एक बंदे से बात की वो कहता है भाईजान ये बालों को आप जो है ना आम चीज ना समझो।
अच्छा।
मैंने कहा वो क्या कहता है, भाईजान बाल जो है वो भी बिकते हैं।
हाँ,
मैंने कहा यार एक दौर होता था लोग जमानत के तौर पे जो है ना अपनी बंदे मूंछ का बाल जो है किसी के पास रखवा देते थे ना।
अच्छा।
तो बंदा तबार कर लेता था।
क्या बात।
मैंने कहा अब आप कह रहे हो कि भाई इन बालों की भी कीमतें मिलती हैं।
सही बात है अंकल, और ये बाल जो खरीदने वाले होते हैं गलियों में चक्कर लगाते हैं, बकायदा आवाज आती है, स्पीकर लगाया होता है उन्होंने।
हाँ जी वो यकीन जानो अब इतने महंगे बाल हो गए, ऐसे ही बंदा गुजर रहा था उसने आवाज लगाई बाल बेच लो बाल बेच लो। मैं गलती से मैंने दरवाजा खोल के तो बाहर निकला, कहते नहीं भाई जाना आप जाए अंदर, आपसे हमें कोई काम नहीं।
अच्छा अंकल चले, बालों के मुतालिक एक रिवायत ये है, कहा जाता है क्या कह लें इसको, एक मन घड़त कहानियां कह लें या अपने ही जहन से बनाई हुई ख्यालात कह लें, कि बाल जो हैं अगर आप बना कर तो उनको ऐसे ही फर्श पर फेंक देते हैं तो इससे सर का दर्द शुरू हो जाता है।
शाबाश, मेरे तो पता नहीं कहाँ कहाँ किस कौन कौन से फर्श पे गिरे हैं, मुझे तो इस बात का सर दर्द लगा रहता है कि पता नहीं यार ये जो बाकी रह गए ये कब झड़ने हैं।
नहीं अंकल वाकई ये हकीकी बात है, लेकिन आप ही मुझे ये बताएं कि किस हद तक ये सच है।
सच का तो मुझे नहीं पता, ये बस ऐसी तोहमात हैं, वहम है लोगों के जो बने हुए हैं, लेकिन ये इनका बालों के गिरने से क्या फर्क पड़ सकता है इंसान को, या इंसान को क्या दर्द हो सकता है बालों का। हाँ ये अलग बात है कि बाल ज्यादा होने की वजह से भावे दर्द शुरू हो जाए।
सामिन प्रोग्राम में वक्त हुआ जाता है एक छोटे से वक्फे का, लेकिन वक्फे के बाद हम बालों के हवाले से ही मजीद गुफ्तगू करेंगे और इनसे मुतालिक मजीद तोहमात जो हम लोगों में आमतौर पर پائی جاتی ہے، اسی حوالے سے بھی گفتگو کریں گے۔ اس وقت آپ کہیں مت جائیے گا، ہم تھوڑی دیر میں حاضر ہوتے ہیں۔ دوست، یہ ریڈیو ویریتاس ایشیا کی اردو سروس ہے اور اس وقت آپ پروگرام سماعت فرما رہے ہیں بزم دیوان۔ جی دوستو، تو آج کے پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں بالوں کے حوالے سے۔ جن کے بال گر جاتے ہیں وہ بہت سی مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں اور پریشانی بھی ان کو اکثر اوقات لاحق رہتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے ہم بالوں کے حوالے سے مختلف توہمات کا بھی ذکر کر رہے ہیں۔ جی انکل، تو بات میں کر رہی تھی کہ خواتین میں یہ توہمات عام طور پر پائی جاتی ہے، اور ہماری جو پرانی خواتین ہیں، نانیاں دادیاں، وہ عموماً یہ کہا کرتی تھی کہ بال جب آپ بناتے ہو تو کنگھی میں جو بال ٹوٹ کر رہ جاتے ہیں ان کو کسی خاص جگہ پر رکھا جائے، خاص ڈبا رکھا ہوتا تھا خاص، جو جس میں وہ سارے بال جو تھے وہ ڈالے جاتے تھے، اور پھر کہا جاتا تھا کہ اس کو پانی میں بہایا جائے، اس کو کسی جگہ پر نہ پھینکا جائے، کیونکہ اس طرح سے وہ سر کے امراض جو ہیں وہ لاحق ہو جاتے ہیں، یا سر میں درد جو ہے وہ رہتا ہے۔
ہاں جی بالکل، اور بچپن میں جب ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے نا، تو دادیاں نانیاں جو ہوتی ہیں نا، وہ جو پیلوٹھی کے بچے ہوتے ہیں، جو پیلوٹھے ہوتے ہیں،
بالکل
لڑکوں کے خاص کر سر کا بڑا دھیان رکھا کرتی تھی، اور اکثر تو جو ہے نا وہ مطلب چھوٹے چھوٹے بال رکھنے، بلکہ ٹینڈ کروا کے رکھنی کہ کوئی کسی کے بچے کے بال کاٹ نہ لے، ایسی تومات ہوتی ہیں۔
انکل یہ بھی تو سنا نا کہ بالوں پر بہت زیادہ جادو ٹونا چلتا ہے۔
شاباش بھائی، ہمارے بالوں پہ تو آج تک کوئی جادو ٹونا نہیں چلا، نہ بجے کی بانسری ہے جی۔
انکل کیا پتا کسی نے جادو ٹونا کیا ہو کہ آپ کے بال جو جھڑ جائیں۔
شاباش، میں نے جادو ٹونے سے بال چڑھنے لگتے تو پھر تو مطلب ہر بندہ ہی گنجا ہوتا، اور ویسے تو آج کل جادو ٹونا کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں رہی، ہر بندہ ہی یہ دیکھو مطلب پہلے تھوڑا سا آگے سے وہ مطلب پفسا ختم ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ جو ہے پیچھے کو موٹر پہ بننی شروع ہو جاتی ہے، اور پہلے لوگ جو ہے نا کسی بندے کی پچھان بتاتے تھے، لمبا چوڑا جوان آدمی ہے بھائی،
اچھا
یہ بڑے بڑے اس کے ہاتھ ہیں، گورا چٹا ہے یا سانوڑا ہے یا گندمی رنگت ہے، جی موٹی موٹی آنکھیں ہیں، اور آج کل تو نشانی ایک ہی رہ گئی ہے،
کیا انکل؟
کہ اس کے نا آگے سے بال تھوڑے سے چڑھے ہوئے ہوں گے۔ وہ یقین جانو اس چکر میں بندے کو ڈھونڈنا ہی مشکل ہو جاتا ہے، جس بندے کو دیکھو اس کے آگے سے تھوڑے سے بال چڑھے ہوتے ہیں، بلکہ اس طرح تو کئی دفعہ حادثات بھی جنم لے لیتے ہیں۔
وہ کیسے انکل؟
وہ بندہ نا نکلا مطلب حمام سے باہر نکلا، وہ ہیئر ڈریسر سے کٹنگ شٹنگ کرا کے،
اچھا
اور اس کے بال بابا چڑھے ہوئے تھے،
اچھا
ہیں جی، تو ایسے مطلب چندیا سی باہر نکلے، چندیا سی، ایک بندہ پیچھے سے آیا، زور سے سر میں ہاتھ مار کے کہتا ہے او ماجے تو ادھر پھر رہا، میں تجھے ادھر ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ جب اس بندے نے پیچھے مڑ کر دیکھا نا تو بندہ تھوڑا سا پریشان ہو گیا، وہ کہتا معاف کیجئے گا، آپ کی طرح کہ میرے ایک دوست ہے، اس کی بھی آپ جتنی ٹینڈ ہے، تو میں نے اس کے چکر میں آپ کو مار دیا۔ وہ کہتا ہے چلو کوئی بات نہیں۔ وہ بندہ بےچارا اگلے موڑ پہ گیا، پھر ایک پیچھے سے زور سے آئی، ماجے تیرے چکر میں میں نے پہلے کسی اور کو مار دیا، یا کہتا ہے وہ بندے کی اچھی خاصی درگت بن گئی۔ وہ کہتے ہیں نا سر منڈاتے ہی اوڑے پڑے، بس وہ حساب اس کے ساتھ ہوا کہ سر منڈاتے ہی جو ہے وہ تھپڑوں کی برسات ہو گئی۔
صحیح کہہ رہے ہیں۔ اچھا انکل، بالوں کے حوالے سے ایک اور توہم پرستی جو ہے وہ یہ ہے، کہا جاتا ہے کہ جو بہن بھائیوں کی بہنیں ہوتی ہیں ان کو منگل والے،
ظاہر سی بات ہے ساری بہن بھائیوں کی بہنیں ہوتی ہیں، مطلب کبھی سنا ہے کہ وہ باپ کی بہنیں یا وہ فلانے کی بہنیں، بھائیوں کی بہنیں ہوتی ہیں۔
جی انکل، اب میری بات غور سے سنیں۔
ہاں جی چلیں۔
ایسی لڑکیاں، ایسی کنواری لڑکیاں جن کے بھائی ہوتے ہیں،
شاباش
انکل سن رہی نا رہے آپ، یہ تو ہم پرستی ہے۔
اچھا،
انہیں منگل والے دن اپنا سر جو ہے وہ نہیں دھونا چاہیے۔
اچھا، جن کے بھائی ہوتے ہیں ان کو منگل والے دن اپنا سر نہیں دھونا چاہیے؟
جی،
کسی اور دن، مطلب اکثر جو ہے نا گاؤں میں یہ خواتین کے سروں میں جوئیں پڑی ہوتی ہیں۔
انکل اب ایک دن کے لیے جوئیں تھوڑی نہ پڑیں گی، جنہوں نے منگل کو نہیں دھونا وہ بدھ کو دھو لے۔
اچھا نہیں، مطلب یہ ہے کہ وہ منگل کے چکر میں پڑے رہتے ہیں، اچھا منگل آئے گا تو پھر بعد میں تو لیں گے، وہ یہ بھی ہوتا ہے نا، وہ اب تو منگل آنے والا ہے، तो मंगल के चक्कर में एक बंदा था ना, वो भी ऐसे ही कहता था, उसका मतलब सोमवार पीर मंगल बुध जुमेरा जुमा हफ्ता इतवार जो है ना, उसको यही था कि जिस दिन सर तो आएंगे वो मनहूस होगा।
तो अंकल,
तो उसने सर में जुए पड़ गई, बाल बड़े बड़े हो गए। तो एक दिन ना धूप में बैठा हुआ,
अच्छा,
तो सर पे जो टोपी पहनी हुई थी ना, कभी उसको उल्टी करके पहन ले, कभी उसको सीधी करके पहन ले। वो एक बंदा करीब से गुजरा, उसने कहा यार ये क्या कर रहा है तू? कहता यार असल में सर में पड़ गई है जुए, तो वैसे तो मरती नहीं है, तो मैंने कहा चलो आज इनको सफर कर करके मरवाओ। मतलब सीधी टोपी पहन के जब वो उधर चढ़ जाए तो उल्टी करो तो सफर करके अंदर को जाए।
नहीं अंकल खैर, ये तो तोहमत जो है वो शुरू से चलती आ रही है और आज तक जो है वो मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने में जरूर पाई जाती है। लेकिन बालों के हवाले से हम यही कहेंगे कि बालों की सफाई सुथराई का ख्याल रखना चाहिए, और जहाँ तक हो सके ये बड़ी नेमत होती है और इस नेमत का उन्हीं को अंदाजा है जिनके पास बाल होते हैं।
हाँ जी, जहरी सी बात है ये, अब तुम लगा तो मुझे रही हो ना बात है जी। असल में इस नेमत का अंदाजा उन्हीं को होता है जिनके सर पे बाल रहते नहीं है। जिनके पास बाल होते हैं उनको क्या नेमत का। और वैसे भी ये जो तोहमात होती है ना,
जी जी,
कई दफा मतलब हमारे लोगों को आदत होती है गप मारने की या मतलब ऐसी बेपर की छोड़ने की, तो उससे भी कई दफा तोहमात जो है ना वो जन्म ले लेती है। वो एक दोस्त था ना मेरा,
अच्छा,
ऐसे ही बस उसने गांव गया, मैं उसके पास घोड़ा रखा हुआ था,
अच्छा।
मैंने कहा यार घोड़ा तो बड़ा शानदार रखा हुआ है। कहता है ये बड़ा शानदार भी है और बड़ा जबरदस्त भी है।
अच्छा,
मैंने कहा कैसे? कहता है यार एक दफा मैं पड़ गया बीमार,
अच्छा,
घर वाले सारे गए हुए थे कहीं ममान, घोड़ा अकेला ही था घर, इसने जी जैसे ही इसने देखा कि मेरा मालक बीमार है तो घर से दौड़ के बाहर निकला है, अद्धे घंटे बाद तीजे पिंड से जाके डॉक्टर को लेके आ गया।
वाह,
मैंने कहा वेरी गुड भाई, तुम्हारा घोड़ा तो बहुत समझदार है। कहता नहीं इतना भी समझदार नहीं है, ये दरअसल डॉक्टर तो ले आया था लेकिन ले डंगर डॉक्टर आया था। मैंने कहा ये तो और उसने समझदारी की बात की है कि तुम्हारे लिए डंगर डॉक्टर को ले आए।
दोस्तों हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा मगर प्रोग्राम में वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से वक्त पे का, कहीं मत जाइएगा, हम अभी हाजिर होते हैं। दोस्त ये रेडियो वेरितास एशिया की उर्दू सर्विस है और इस वक्त आप प्रोग्राम समाप्त फरमा रहे हैं बस में दीवान। जी दोस्तों, आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं बालों से मुतालिक, खासतौर पर उन अफराद के लिए हमारी गुफ्तगू जो है बड़ी हौसला अफजा साबित होगी जिनके बाल जो है वो झड़ चुके हैं, क्योंकि अंकल दीवान जो है वक्तन फक्तन बड़ी हिम्मत दिला रहे हैं कि ऐसा हर एक के साथ होता है, हर दूसरा इंसान जो है वो बालों की वजह से परेशान है। साथ ही साथ बालों के हवाले से कुछ तोहमात का भी जिक्र किया गया है और अब मजीद जो है हम इसी हवाले से अपनी गुफ्तगू का आगाज करते हैं।
हाँ जी बिल्कुल, मेरा एक दोस्त है वो
जी जी,
उसके सर पे बस गिनती के चार पांच बाल थे वो भी खत्म हो गए, एक ही बाल ना वो दरमियान में चंदिया के दरमियान में रह
अच्छा,
गया।
अच्छा अच्छा,
वो अब ना सवेरे शाम शीशे के सामने खड़ा हो जाता है,
अच्छा अच्छा,
उसी बाल पे कंघी फेर फेर के उसी को कहता रहता है, पवस्ता रह शजर से उम्मीदें बाहर रख, पवस्ता रह शजर से उम्मीदें बाहर रख।
अच्छा अंकल, मैं ये चाहूंगी कि आज बालों के हवाले से प्रोग्राम चल रहा है तो आप वो गीत भी हमारे दोस्तों को जरूर सुनाएं जो कि बालों के हवाले से है ना, जो सेरा गाते हैं शादी पे।
अब बहुत है वो मतलब लाटू लजी सुलझा जा रे बालम।
अंकल नहीं, शादी ब्याह वाला गाना है, लाटू लजी वाला नहीं है।
मथे पे चमकण बाल मेरे बलड़े के,
जी जी जी,
वो फिर वो ऐसा ऐसा ये गाना जो है ना ये बदलता जाता है
जी जी।
जब बंदे की शादी होती है बड़े सोने बाल होते हैं, सेरा पहना होता है, जब सेरा उतरता है तो आती हैं बीबियां, आती हैं तो गाती हैं मथे पे चमकण बाल मेरे बलड़े के,
जी जी।
ऐसा ऐसा जब बाल कम होना शुरू हो जाते हैं ना फिर गाना भी बदल जाता है, फिर होता है मथे पे टावा टावा बाल मेरे बलड़े के।
अंकल एक शादी पे तो मैं भी गई थी और वो जो आमतौर पर عورتیں آتی ہیں وہ بجا کے.
ہاں جی ہاں جی.
ہاں تو وہ دھولا بےچارا گنجا تھا.
اچھا.
تو وہ گانا گا رہی تھی متے تو کنے پیچھے وال میرے.
کیا بات ہے. وہ بلکہ کئی تو کہتے ہیں ہاں جی جی دولہا آ گیا بال آدھا گھنٹہ لیٹ ہے ابھی پیچھے پیچھے آ رہے ہیں مطلب اس کے پیچھے ہی ہوتے ہیں نا.
بالکل بالکل صحیح کہہ رہے
ہیں. بہرحال ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ اب دیکھو کتنے جدید دور آ گیا ہے. ہیئر ٹرانسپلانٹیشن ہو رہی ہے.
بالکل
جاتی ہیں سب کو جیسے سلسلے ہو گئے ہیں تو اس کو احساس کمتری نہیں بنانا چاہیے. یہ زندگی کے ساتھ ہے اور ضروری نہیں ہے کہ جس بندے کے سر پہ بال نہ ہو
جی.
اس کے سر میں عقل بھی نہ ہو. انسان عقل مندی اور اپنی سیرت سے پچھانا جاتا ہے اور یہی اس کی پچھان ہوتی ہے. اب دیکھو کبھی دیوان تھا پھر انکل بھائی دیوان ہو گیا
جی جی. اور اب
انکل دیوان ہے
جی.
اب وہ بھی ٹائم آ جانا جب بابا دیوان ہو جائے.
ارے نہیں انکل, آپ ہمیشہ ہمارے ساتھیوں کے دلوں میں زندہ رہیں گے اور اسی طرح سے جوان رہیں گے.
خدا نہ خاصا کچھ میرے ساتھ ایسا ویسا میں نے نہیں بولا. میں نے بابے دیوان کا بولا ہے. ساتھیوں کے ذہنوں میں ساتھیوں کی سوچوں میں یادوں میں بھی زندہ رہیں گے اور ویسے بھی خدا تعالیٰ زندگی دے سب
جی جی جی
ادھر ہی ہیں.
انکل آپ میری بات تو آپ نے پوری سنی نہیں ہے.
اچھا جی ہاں جی.
میں یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ آپ ہمارے ساتھیوں کے دلوں میں ذہنوں میں اسی طرح سے ہمیشہ جوان رہیں گے اور ہمیشہ سے جوان رہیں.
ہاں جی خیر مطلب موضوع کوئی بھی ہو خامدوں اور بیویوں کے حوالے سے جو ہے نا اکثر جو ہے نا مجھے لطیفہ جو ہے وہ یاد آ جاتا ہے.
جی جی یہ تو آپ کا پسندیدہ موضوع ہے نا.
وہ کوئی بندہ تھا نا یہ مرنے مرانے کی بات ہو گئی.
اچھا
تو بیوی اپنے بندے کو کہتی ہے تمہارے دوست کی بیوی فوت ہو گئی ہے تم گئے نہیں. کہتا ہے کس منہ سے جاؤں.
اچھا
اس کی چوتھی بیوی کے جنازے پہ جا رہا ہوں اور میں اس کو ایک دفعہ بھی نہیں پڑھا سکا.
تو اس پر بیوی نے کوئی ریئیکشن نہیں دکھایا.
ظاہر سی بات ہے ریئیکشن تو ہوا ہوگا. پھر بعد میں کہتا پھرتا تھا کہ جی بس کیا کرے محبت میں پھول مارا ہے. اور میں نے کہا یہ تو روبڑا بنا ہوا ہے تمہارے سر پہ. کہتا گملے سمیت ہی مار دیا.
صحیح کہہ رہے ہیں انکل. لیکن انکل اچھا بالوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو مجھے یہ بات یاد آ گئی. عموماً جب لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو لڑائی جھگڑے میں بھی سب سے پہلے بال ہی پکڑے جاتے ہیں.
میں کہتا ہوں اس معاملے میں وہ گنجے لوگ جو ہیں وہ بہت خوش قسمت لوگ ہیں کہ نہ بال ہو نہ کسی کے ہاتھ میں آئے.
جی
اور ویسے بھی وہ محاورہ ہے نا کہ اپنے بال کسی کے ہاتھ میں دینا.
جی بہن
جی کہ مطلب اپنا جو اختیار ہے وہ کسی کے ہاتھ میں سونپ دینا.
جی ہاں
تو ظاہر سی بات ہے بھائی اس معاملے تو گنجے دوست جو ہیں ہمارے وہ خوش قسمت ہی ہوئے.
اور جی دوست انہی خوبصورت باتوں کے ساتھ پروگرام کا وقت جو ہے اختتام پذیر ہوتا ہے. ارم عمران اور انکل دیوان کو اجازت دیجیے.
جو پڑے دیوار